नैनन बाण पड़ी आलेरी मेरे नैनन बाण पड़ी चित चढ़ी मेरे माधुरी मूरत चित चढ़ी मेरे माधुरी मूरत उर विच आन अड़ी उर विच आन अड़ी आलेरी मेरे नैनन बाण पड़ी कब की ठाड़ी पंथ निहारूं कब की ठाड़ी पंथ निहारूं अपने भवन खड़ी आलेरी अपने भवन खड़ी मेरे नैनन बाण पड़ी आलेरी मेरे नैनन बाण पड़ी कैसे प्राण पिया बिन राखूं कैसे प्राण पिया बिन राखूं जीवन मूल जड़ी आलेरी जीवन मूल जड़ी मेरे नैनन बाण पड़ी आलेरी मेरे नैनन बाण पड़ी मेरा सतगुर हाथ बिकाने मेरा सतगुर हाथ बिकाने लोग कहें बिगड़ी लोग कहें बिगड़ी मेरे नैनन बाण पड़ी आलेरी मेरे नैनन बाण
आज आपके सामने दो शब्द रखे जाएंगे एक स्वामी जी महाराज की वाणी में से और एक गुरु अर्जुन साहब की वाणी में से सब महात्माओं की वाणी एक ही मिमे को हल करती है और वो क्या है कि हम कौन है हमारा तल्लक उस प्रभु से क्या है हम कैसे उसको भूल गए और कैसे फिर उसके साथ जुड़ सकते ये दुनिया के सामान जितने भी हैं इनका तल्लक इस जिस्म से है जो पैदा होते हुए तो साथ आता है मैं मरते हुए साथ नहीं जाता ये सारे सामान यहीं के यहीं रह जाने वाले हैं ना किसी के साथ गए न जा सकते ये एक बड़ी भारी भूल है जिसमें सारी दुनिया जा रहे जच महाभारत में जिक्र आता है कि जच ने युधिष्ठिर से सवाल किया है कि वो कौन सी, बड़े अचंभे की बात है जो हो रही है दुनिया। तो युधिष्ठिर ने जवाब दिया था कि सबसे अचंभे की बात यही है कि हम रोज अपनी आंखों से देखते हैं कि हमारे जैसे जिस्म चार भाई उठाकर शमशान भूमि में जाकर दाग दे देते, ऐसी जिस्म है, और हमें इस जिस्म के छोड़ने का यकीन नहीं आता। आंखों से देखते हैं, कंधों पर उठाते हैं, मैं यकीन नहीं आता। इससे बढ़कर और अचंभे की बात क्या हो सकती है? एक बड़ा भारी धोखा है जिसमें सारी दुनिया जा रही है, पढ़े अनपढ़, अमीर गरीब, हाकिम महकूम, कोई इससे खाली नहीं, नो एक्सेप्शन। खाए एक इंसान एक चीज को देखते हुए आंखों को मीच ले, बंद कर ले, तो भी वो चीज तो होगी, जिसम तो छोड़ना पड़ेगा भाई। आज छोड़ो, 10 दिन में छोड़ो, 10 साल में छोड़ो, 100 साल में छोड़ो, 1000 या 1,00,000 वर्ष में छोड़ो, इससे तुम किसी तरह से बच नहीं सकते। और फिर इस के लिए वक्त कोई मुकर्रर नहीं, लोकी कब आ जाए, बड़ी अनसर्टेनिटी है। बैठे आ जाए, रास्ते चलते आ जाए, रात सोते आ जाए। सो इस मजमून को सब महात्माओं ने दुनिया के सामने रखा। इस वक्त आप गौर से सुनिए बानी वो क्या फरमाते हैं।
मित्र तेरा कोई नहीं संगियन में, पड़ा क्यों सोवे इन ठगियन में।
स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, आया भाई जितने तेरे संगी साथी हैं इनमें तेरा मित्र कोई नहीं। संगी और साथी की तरफ नजर मारो, सबसे पहला संगी और साथी कौन है? ये जिस्म, ये शरीर जो पैदा होते हुए हमारे साथ आता, मर जाती हुई हमारे साथ नहीं जाता, ये पहला संगी है। उसके बाद माता पिता, भाई बहन, रुपया पैसा, स्त्री बाल बच्चे, इनमें तुम्हारा मित्र कौन? उनके संबंध शरीर के सबब से बने, शरीर जो साथ आता है साथ नहीं जाता, फिर मित्रता कैसे? मित्र की तारीफ संतों ने की, जिन्ना दिसंदनिया मेरी दुर्मत वंजे, मित्र साधने से ही कि जिनके मिलने से हमारी दुर्मति का नाश हो वो मित्र। दुर्मति क्या? जगत असत है और आत्मा सत्य है, ये तो सुमत्त है, असल चीज। पर हमें क्या भास रहा है? ये जिस्म सत्य है, जगत सत्य है और आत्मा का पता ही नहीं, ये दुर्मति है। सबसे बड़ी दुर्मति ये है, जिनके मिलने से सत्य और असत का निर्णय हो जाए, विवेक पैदा हो, हम सत्य को ग्रहण करें, इसका नाम ये हासिल हो, ऐसी हस्ती की सोबत का नाम है मित्र। फिर आगे कहते हैं कि हमने सारे जगत में ढूंढ वाला मगर ऐसी हस्ती कही कही। तो फरमा रहे हैं, तू पड़ा क्यों सोए इन ठगियन में? कहते इन ठगों के दरमियान तू सो रहा है भाई, क्यों? ٹھگ کس کو کہتے ہیں؟ ٹھگ بڑے شریف شکلیں رکھتے ہیں، سفید کپڑے ہوتے ہیں، آپ سے بڑی میٹھی میٹھی باتیں بھی کرتے ہیں، آپ کو پتہ ہی نہیں لگتا، آپ لوٹے جاتے اور آپ کو پتہ نہیں لگتا۔ ٹھگ چور نہیں ہوتے، بڑے جینٹل مین شریف سفید کپڑے پہنے، آپ کو بھائی بندھو بن کر یہ وہ کر کے آپ کو پتہ نہیں لگتا کس وقت آپ لوٹے جاتے ہو، پیچھے پتہ لگتے لوٹے گئے۔ یہ ٹھگ کیسے ہیں؟ جس پہلے سب سے بڑا ٹھگا کہتے ہیں یہ ہمیشہ رہے گا، میں کبھی کسی کا رہا تو یہ ٹھگی نہیں تھا اور کیا ہے؟ روپیہ پیسہ جائیداد کیا یہ ہمیشہ رہنے والی چیز ہے؟ اس جسم کے ساتھ اس کا رنگ روپ اور جوانی کیا ہمیشہ رہنے والی چیز؟ یہ سب ٹھوکا ٹھگ کہتے ہیں۔ ٹھگوں کے درمیان تو انسان جاگتا پرش بھی ہو نا، وہ بھی لوٹا جاتا، اور جو ٹھگوں کے درمیان سو رہا ہو پھر اس کا کیا حشر ہوگا؟ سوچنے کی بات۔ یہ جگت سارا ہی مرتیو کا منڈل ہے، موت کا منڈل ہے، مرت منڈل جگ ساجا، مرت کا منڈل ہے، سمجھا؟ جنہ جگت بنا ہوا ہے یہ موت کا سامان ہے، جو بالو گھر بار جیسے ریت کا مکان ہو وہ کب تک ہے؟ جب نمی جائے گی گر جائے گا۔ ایسے مکان بنست بار نہ لاگہی، اس کے بنسنے میں دیر نہیں لگتی ہے، جو کاغذ بونار، کاغذ پر پانی پڑ جائے وہ کتنی دیر رہتا ہے کاغذ؟ تو یہ جسم ہمیشہ رہنے والی چیز ہے، یہ سب سے بڑا ٹھگ ہے۔ مہاتماؤں نے بڑے زوردار لفظوں میں اس بات کے سمجھانے کا یتن کیا، جگ رچنا سب جھوٹ ہے، جان لو رے میت، اے متر جان لو یہ جگت کی رچنا ہمیشہ رہنے والی نہیں، جھوٹ سے براد ہمیشہ رہنے والی، اس میں کیا حالت میں کون نانک پھر نہ رہے جو بالو کی بھیت، یہ ہمیشہ رہنے والی نہیں، جیسے ریت کی دیوار اساری ہو تو کتنی دیر رہے گی؟ یہ حالات بدل رہے ہیں مگر ہمیں بدلتے ہوئے معلوم نہیں ہوتے۔ یہ تو دنیا کے سامانوں کا حال ہے، باقی رہے بھائی بندوں کا، رانا راؤ نہ کو رہے رنگ نہ تنگ فقیر، واری آپو اپنی کوئی نہ مانے رہی، نہ بادشاہ رہے نہ رعیت رہی، نہ دنیا دار رہے نہ ولی اوتار رہے، سنت اور مہاتما بھی آئے جسم لیا اور چھوڑ گئے، اور ہم نے بھی چھوڑ۔ بڑے بڑے راجے مہاراجے جو دیہات لاکھوں کروڑوں اربوں لوگ آئے ہیں اور چلے گئے، ہم کب تک رہیں گے؟ اسی بات کا جاننا، مرنا سچ ہے اور جینا جھوٹ ہے، موت کوئی ہوا نہیں، یہ بھی یاد رکھو، یہ ایک زینہ ہے جس سے ہم نے ترقی کر کے آگے جانا، مگر اصلیت کے راز کو نہ جاننے کے سبب سے ہم یہاں بھی دکھی ہیں اور مر کر بھی دکھی ہیں، اور ماؤ سے بھی بھیت ہو رہے ہیں، سمجھے؟ تو اس بات کا جاننا ہے، کہاں سوبھائی میت ہے دیکھ نین پسار، بھائی کہاں کے بھائی کہاں کے متر، ذرا آنکھیں کھول کر تو دیکھ، ایک چالیں ایک چال سی سب کو اپنی وار، پرارمبھ کرموں کے انوسار جب لینا دینا ختم ہوتا ہے سب کچھ جانا پڑتا، کون رہا اور کون رہ سکتا یہاں دنیا میں؟ جب ایویکشن آرڈر ایشو ہوتا ہے تو اس کی تعمیل میں دیری نہیں ہوتی، ہو سکتا ہے اس میں کچھ سفارش چل جائے، کچھ اس کی تعمیل میں تھوڑی دیری بھی ہو جائے، مگر جب پرماتما کی درگاہ سے پروانہ پھٹ جاتا ہے اس میں دیری نہیں، وہاں کوئی سفارش نہیں چلتی، لیکھے سانس گراس، ہمارے سانس سب حساب میں، جو کچھ کھانا پینا یہ بھی حساب میں, جو لینا دینا یہ سب ختم ہونے پر سب کو جانا پڑتا. تو ایسی حالت میں جیسے رین پراوڑے اٹھ چل سی برباد, رات کو پراؤنا آ جائے تو سو دن چلے چلا جاتا, پراؤنے کتنے دن رہتے, ایک دن نہیں دو دن سے ہی سمجھے. ایسی ہے بھائی, کیا تو رتا گرس ہو سب پھولا کی بغا. ارے بھائی تو گرس میں رت رہا ہے, اس کا روح بن رہا, یہ پھولوں کا باغیچہ ہے, آؤ سیر کرو اور چلے جاؤ باغ میں. تم جاؤ تو وہاں آپ سیر کر سکتے, بیٹھ سکتے, مگر شام کو باغ خالی کر دیا جاتا ہے. جاؤ بھائی تم سیر کرو, پھرو, بیٹھو, لیٹو, شام کو گھر چلے جاؤ. اگر وہاں کسی پھول پات کو توڑو گے تو مالی پکڑ لے گا, چالان کر دے گا. تو یہ کہا ہے سادھو ایسا چاہیے رہے باغیچے میں, سادھو کو ایسا چاہیے رہے تو باغ میں, پھول پات توڑے نہیں. پھول پاتوں کو مت توڑو, نہیں تو حساب ہوگا بھائی ہر ایک بات. پھول پات توڑنے سے کیا مراد ہے, لمپٹ ہو کر ہر ایک چیز کو اپنا اپنا کہنا, یہی توڑنا ہو گیا, یہ میرا ہے یہ تیرا, کہتے اس میں نہ پھنسو. اسی بات کے جاننا نہایت ضروری, مگر ہم اس طرف سے انگیل, بڑے بھاری دھوکھا ہے. اس کا کارن کیا کہ جگت کے ذرے بدل رہے ہیں, میٹر از چینجنگ, میٹر سے یہ سب جگت بنا ہے, اس سے یہ ہمارا جسم بھی بنا, دونوں ایک ہی رفتار سے بدل رہے ہیں. جب دو چیزیں ایک رفتار سے بدلیں تو جو اس پر سوار ہے نا وہ معلوم ہوتے ہم کھڑے ہیں. جیسے دو ٹرینیں, بعض وقت ایسا اتفاق ہوتا ہے کہ ایک ہی طرف دونوں ٹرینیں جاتی ایک ہی رفتار سے ہو جاتی ہیں, تو جو ان کے سوار ہیں وہ سمجھتے ہم کھڑے, حالانکہ دونوں ٹرینیں مارو مار میں جا رہی ہیں. جب وہ باہر دیکھتے تو معلوم ہوتا ہے کہ بھائی واقعی ہم جا رہے ہیں. تو ایسے ہی ہم جسم کا روح بنے بیٹھے ہیں, اس کے ذرے ذرے بھی بدل رہے ہیں, جگت کے ذرے بھی بدل رہے ہیں. اس لیے دونوں چونکہ ایک رفتار سے چل رہے ہیں اس لیے ہم معلوم ہوتے ہیں یہ جگت سر, آنکھوں سے دیکھتے ہیں پھر بھی اعتبار نہیں آتا. ہاں اگر ہم اس جسم سے باہر کھڑے ہو جائیں, اگر نکلنا نصیب ہو جائے تو معلوم ہو یہ سب کچھ بدل رہا ہے. اے جگ دھوئے کا تاول ہر قربانی میں کہتے کہ یہ دھوئے کا بھاڑا بھائی, اس کی اصل حقیقت کوئی نہیں, نہ ہمیشہ رہنے والی ہے نہ رہ سکتی ہے. تو یہ پہلی بات ہے جو ہمارے سامنے ہے, اس کے بھول جانے سے دنیا میں ہم لمپٹ ہو جاتے ہیں. اب اس بھول میں کون ہے, کون کون ہے, سب ہے, سب جا رہے ہیں, عالم بھی بے علم بھی, امیر غریب سب, چھوٹے بڑے, جگت ست کر کے مان رہے ہیں, ہے اسات ہمیشہ رہنے والا نہیں. جن چلن جانے سو کیوں کرے بتا, جنہوں نے چلنا جان لیا کہ ہم نے جانا, وہ اتنے پسارے جھوٹ فریب کی کیوں کرے, کر نہیں سکتے. سو فرما رہے ہیں کہ اے بھائی تیرا ان میں کوئی بھی متر نہیں, یہ سب ٹھگ ہیں, ٹھگ ظاہر ہے تو بڑے جینٹل مین معلوم ہوتے ہیں, بڑے اچھے معلوم ہوتے ہیں, مگر تمہیں لوٹ رہے ہیں. دیکھیے ایک آدمی آتا, وہ آپ کی کوئی سامان اٹھا کر لے جاتا, ایک عورت آپ کے کپڑے اتار کر لے جاتا, ایک اور آتا ہے آپ کے جسم کو زخمی کر جاتا, یہ خطرناک ہیں سارے ہی, مگر ایک اور آدمی آتا ہے جو آپ کی روح پر قبضہ پاتا, وہ سب سے زیادہ خطرناک. کیسے؟ بال بچوں کی طرف دیکھو, استری کی طرف دیکھو, دوست متروں کی طرف دیکھو. جب وہ آ بیٹھتے ہیں نا, ہماری سوچ کو اپنی طرف کھینچتے ہیں, وہ ہماری سوچ پر حملہ کرتے ہیں. خطرناک ہوئے کہ نہیں؟ سب سے زیادہ خطرناک. ایک بچہ ہو, پانچ دس آدمی گھر کے بیٹھے, وہ ناچتا ہے, کودتا ہے, دوڑتا ہے, سب کسی کو توجہ کو کھیل جانے نہیں دیتا, اپنے میں کھینچتا. وہ ان نوئنگلی, نہ جانتی ہوئی ہماری روح پر قبضہ پا رہا. کتنے بھاری خطرناک. جتنی کوئی چیز زیادہ پیاری معلوم ہوتی ہے, وہ زیادہ خطرناک ڈاکو اور ٹھگا. مگر کیا ہم اس کو سمجھتے ہیں؟ نہیں. دھوکہ ہے کہ نہیں؟ کوئی تو جسم لے کے چھوڑ گیا, کوئی ہماری جائیداد کپڑے لے کے چھوڑ گیا, وہ بھی خطرناک تو ہے, مگر وہ سب سے زیادہ خطرناک ہیں جو ہماری روح پر قبضہ پاتے ہیں اور ہم کہیں کہ نہیں رہتے. بار بار کہاں جائیں گے؟ جہاں وہ کھینچے جائیں. کہتے ہیں ان ٹھگوں میں, ارے بھائی جاگتے پوش بھی لوٹے جاتے ہیں, تو تو سو رہا کیا کر رہا ہوں؟ ہمدردی کے لفظ سب بڑے بھاری. جاگتے پوش موہ مایا میں جو سو رہے جیو ہیں, ان پر ان کو رحم آتا. آؤٹ آف کمپیشن, دیا کے بھاو سے یہ بیچارے سو رہے. ارے بھائی تو کیوں سو رہا؟ یہ تو ٹھگ ہے سب کچھ, نہ ہمیشہ رہے نہ رہ سکتے ہیں, تو کس نشے میں جا رہا؟ دے
متر تیرا کوئی نہیں سنگین میں, پڑا کیوں سوے ان ٹھگین میں, چیت کر پریت کرو ست سنگ میں, گرو پھر رنگ دے نام ارنگ میں.
کہتے ہیں بھائی چیت کر, ہوش میں آ بھائی, چتن ہو, جاگ, کیوں سو رہا؟ چیت کر. سب مہاتماؤں نے یہی اپدیش دیا. وید بھگوان کیا کہتا ہے؟ وہ یہ کہتا ہے, اویک, ارائز اینڈ اسٹاپ ناٹ انٹل دی گول از ریچ. جاگ اٹھو بھائی, کھڑے ہو جاؤ اور چل پڑو, اور اس وقت تک نہ ٹھہرو جب تک کہ تم منزل مقصود پر نہ پہنچ جاؤ. یہی گرو ارجن صاحب نے فرمایا, اٹھ جاگ وٹاوڑیا, تیں کیا چر لایا, اے راستے کے مسافر تو اٹھ جاگ. اس کا مطلب کہیں سو رہے تو راستے کا مسافر ہے. وٹاوڑا کہتے واٹ پر چلنے والا, تو کیوں دیر کر رہا؟ جاگ, ہم سو رہے ہیں کہاں پر؟ موہ مایا سبو جگ سویا, اے پرم کہو کیوں جائے. موہ مایا کے انتر سارا جہان سو رہا ہے. پھر کہتے ہیں یہ بھرم بن گیا نا. بھرم کس کو کہتے ہیں؟ جو اصل میں چیز کچھ اور ہو, ہمیں نظر کچھ اور آئے. یہ جگت اسط ہے, بدل رہا, من ہمیں ست بات رہا. یہ جسم ہمیشہ رہنے والا نہیں, سمجھے؟ جسم ہمیشہ رہنے والا نہیں, مگر ہمیشہ رہنے والا بھاس رہا. یہی دھوکا. اس لیے کیا فرماتے ہیں کہ تو چیتن ہو, پہلی بات تو سو رہا, جاگ, ہوش میں آ. کیا کر؟ پریت کرو ست سنگ میں. تم موہ مایا میں پھنس رہے ہو, جسم جسمانیت اور جو ناشوان چیزیں ہیں ان میں تم لمپٹ ہو رہے ہو. اس طرف سے ہٹو. کدھر لگو؟ کہیں لگنا ہوا نا, آتما کا خاصا ہے لگنا. پرماتما پریم ہے, آتما اس کی انش ہے, یہ بھی پریم ہے. اس نے کہیں نہ کہیں لگ کر رہنا. اب اس وقت یہ جسم کے ساتھ لگی پڑی ہے, جسمانی تعلقات کے ساتھ لگی پڑی ہے. یہ چیزیں فنا ہو جانے والی ہیں, بدل جانے والی ہیں, ناشوان ہیں. वो हटेंगी जब हमारी सुर टुकड़ेगी, हम दुखी हो जाएंगे। किसी ऐसी चीज से अपने आप को जोड़ो जो फना से रहत हो, और वो क्या है? जो सुख को चाहे सदा शरण राम की ले। ऐ भाई, जो हमेशा के सुख को चाहता है उसको क्या करना चाहिए? जो परमात्मा परिपूर्ण रम रहा है, जरे जरे में समा रहा है, उससे लाव लगा ले। ना हो मरे न होवे सो, वो मरेगा नहीं, हमारी सुर तो उखड़ेगी नहीं। जब उखड़ेगी नहीं, जिसम हमारा टूट जाए कोई फिक्र नहीं, बस सुर जहां लगी है लगी ही है, फिर मौत का क्या हो, दुख नहीं हो। तो इसलिए फरमा रहे हैं कि आया भाई तू चेत कर, कर क्या? सत्संग में प्रीत पैदा कर। सत्संग किसको कहते हैं? सत्संग की तारीफ संतों ने की, फरमाते हैं जय सतगुरु तय सत्संगत मढ़ाई। जहां पर सत स्वरूप हस्ती है, सतगुरु कहते हैं सतगुरु सत स्वरूप है, जो सत को पा चुका, सत का स्वरूप हो गया, जिसके अंतरात्म में सत प्रवेश कर गया, ये कह दो वो इजहार है सत का, ऐसी हस्ती की सोबत का नाम सत्संग। हम लोग क्या समझ रहे? हम समझते जहां 10 20 50 100 हजार आदमी बैठ गए, गाना बजाना हो गया, को महात्माओं का या पुरातन इतिहासों का जिक्र हो गया, उसका नाम सत्संग है। अरे भाई, महात्मा ये नहीं कहते। जय सदगुरु तय सत्संग, साधु बिन्ना ही दरबार। तो सत्संग में प्रीत पैदा करो। अब सत्संग किसी ऐसी शख्सियत की सोबत का नाम है जो अनुभव को पा चुका है, सत का स्वरूप हो चुका। एक आदमी जागता हो, उसके गिर्द हजारों आदमी सोए पड़े हो, हम ये कह सकते हैं ये जागते पुरुष की संगत है। वो एक जागता पुरुष सब हजारों को जगा सकता। अब देखिए, जागने वाले कौन है? जिनकी आत्मा मन इंद्रियों के घाट से आजाद होकर अपने आप को जान गई, प्रभु को अनुभव कर गई, वो जागता पुरुष है। बाकी सब सो रहे, आलिम भी सो रहे हैं, बेइल्म भी सो रहे हैं, अमीर गरीब हाकिम महकूम सब कुछ सो रहे हैं, बड़े बड़े चातर लोग सो रहे हैं, जो मन बुद्धि के घाट पर है, इंद्रियों के घाट पर है। कभी उनकी आत्मा पिंड से ऊपर नहीं आई, अपने आप का उनको ज्ञान नहीं हुआ, प्रभु का अनुभव नहीं हुआ, फिर भाई वो जागता कहां? अब जागते पुरुष की सोबत का नाम सत्संग है ना। एक डॉक्टर है, 100-200 आदमी स्टूडेंट उसके गिर बैठे, हम कह सकते ये डॉक्टर की संगत। वो खुद डॉक्टर, इसलिए सबको डॉक्टर बना सकता। और एक कंपाउंडर हो, माफ कर, उसके 20 आदमी बैठे, वो आपको कंपाउंडर ही बनाएगा, डॉक्टर तो नहीं बनाएगा ना। उसके नुस्खे याद है 5-10-20, सुनी सुनाई बातें हैं उसके पास, बस डॉक्टर नहीं बनाए। वकील आपको वकील बना सकता। अरे भाई, कोई मुक्त पुरुष आपको मुक्त कर सकता। मुक्ते सेवे सो मुक्त हो। तो जागते पुरुष की सोबत का नाम सत्संग। ऐसे सत्संगत में कहते प्रीत पैदा करो। प्रीत प्यार है ना आत्मा में, इसे लगना है कहीं। अरे भाई, दुनिया में लंपट होने की बजाय सत्संग में प्रीत पैदा करो। जागते पुरुषों की सोबत में दिल लगा। कहते उसमें क्या फायदा होगा? कई अनेकों फायदे होंगे। जागते पुरुष की सोबत देखिए, वो खुद जागता है तुमको जगा देगा। अब मंदिरों के घाट पर सो रहे, पिंड से ऊपर जड़ और चेतन को अलहदा कराने का तजुर्बा करा देगा। जिसने किया वो करा देगा, जो उसने खुद नहीं किया वो कैसे कराएगा? सवाल तो यह। श्रीमद् भागवत में जिक्र आता है कि राजा परीक्षित के दरबार में पंडित जी थे, श्रीमद् भागवत का भोग पड़ता रहता था हमेशा। कई बार सुना बादशाह ने, आखिर एक दिन कहने लगे राजा परीक्षित को कि भाई श्रीमद् भागवत के मुतालिक लिखा है कि जो इसका भोग सुने वो मुक्त हो जाता। अरे भाई मन तो मजिस्ट्रेट है, ये कह देता नहीं भाई तुम अभी मुक्त नहीं हुआ। मैं भाई मुक्त नहीं हुआ, अब की बार तुमको ये आप ये पाठ शुरू करो और इस भोग के बाद अगर मैं मुक्त न हुआ तो तुमको मार दिया जाएगा। पंडित जी बड़े घबराए। खैर हुक्म था, भोग रखा गया, 7 दिन के बाद पड़ गया। जिस दिन पड़ गया वापस आया, दूसरे दिन मौत का था, घर में बड़ा उदास होकर चारपाई लेकर पड़ रहा। लड़की उसकी बड़ी सियानी थी, पूछने लगी पिता तुम आज उदास क्यों हो? लड़की बेटी मेरी कल मौत का दिन है, जब हमको पता लग जाए ना कल मरना है तो सब ही उदास हो जाते, क्योंकि मौत के मिमी को हल नहीं किया ना। मौत क्या चीज है? मौत को हुआ नहीं, सिर्फ तब्दीली का नाम है, पिंड से ऊपर आने का नाम है। अगर जीते जी तुम पिंड से ऊपर आने लग जाओ, मौत के क्या खाओ? हर एक इंसान मरने ते सब जग डरे, जीविया लोड़े सबको, सारा जहान मरने से डर रहा। हर कोई ये कहता दो सांस और आ जाए मैं जीता रहूं, उसका कारण क्या? केवल तो इसको मरना नहीं आया कि मर कैसे से, जीते जी भी मर सकते हैं। अगर पिंड को जीते जी छोड़ना आ जाए तो काम बन जाए। इसलिए वह दूसरा जहां जाना उसका पता नहीं कहां जाना। अगर जीते जी वहां सफर अभी करने लग जाए फिर तो ऐश है ना। तो दो कारण के सोब से वह भी दुनिया हो रही, तो उसकी सोबत में बैठकर वो जागता पुरुष है, उसने मौत के मिमी को हल किया है, हम भी हल कर रहे हैं। आमिल पुरुष के बचनों में एक वजन होता, क्लियर कट चीज होती है, साध के संग बुझे परम निराम, बड़ी क्लैरिफाइड चीज सामने आ जाती है। तो कहते हैं सत्संग में एज यू थिंक सो यू बिकम, जिसका चिंतन करोगे उसका रूप बनोगे, उस मंडल में चार्जिंग है उसका भी असर पड़ेगा, उसका मन खड़ा है आपका भी मन थोड़ी देर के लिए खड़ा होने लगेगा, क्लियर कट चीज सामने आ जाएगी, फिर उसमें वो मदद करके आपने आपके अनुभव में तुम्हें मदद कर सकेगा, वो जागा है तुमको जगा देगा। तो लड़की थी सियानी, उन्हें राजे सुनसो वो गई दूसरे दिन कि मैं जाती हूँ बादशाह को जवाब देकर आते हूँ। दूसरे दिन गई, राज ने पूछा तुम कैसे आए हो? कहा कि मैं उस बात का जवाब देने आई हूँ। चले हाँ कहो, कहते नहीं जंगल में चलो। वहां बादशाह चला गया, पिता को भी मंगा लिया, दो रसे भी मंगा लिए, एक रस के साथ बादशाह को बांध दिया राजे को, दूसरे के साथ अपने पिता को। पिता को कहने लगी पिता राजन को खोल दो, तो कहने लगे राजा, पिता कहने लगा कि बेटी मैं बना हुआ हूं, बना हुआ तो नहीं खोल सकता। राजे के पास ही राजन मेरे पिता को खोल दो, कह रहे नादान लड़की कभी बना हुआ भी किसी बंधे हुए को खोल सकता। लड़की को यही चाहिए थी, बात चाहिए थी, चले राजन अगर बना हुआ बंधे हुए पुरुष को नहीं खोल सकता तो ये श्रीमद् भागवत का भोग भी किसी मुक्त पुरुष से सुनना था। इन ग्रंथों पोथियों में खास खास राज की बातें हैं जिनको आम दुनिया नहीं जान रही। श्रीमद् भागवत के 7 कांड हैं, 7 भूमिकाओं से ताल्लुक रखते हैं। जो राज को दान होगा वही इस बात को जाने, दूसरा बेचारा क्या जाने। तो सत्संग में कहते प्रीत पैदा करो, बड़ी बात। इसमें 2 बातें हैं, एक तो हर एक चीज क्लैरिफाइड, पांडे की तरह हर एक चीज समझ आने लगी पहले, दूसरे उस मंडल का असर होगा, उसका जैसा मंडल वैसा रंग। महापवित्र साध का संग जिस पेटत लागा हरि रंग, साधु की सोबत महापवित्रता के देने वाली है, जिसके साथ भेंट करने से पेटत मिलना नहीं, पेटत दिल दिल को राह बनने से, एक सुई दिल के बैठने से हरि का रंग नशा आ जाएगा, थोड़ी देर के लिए सरूर आएगा, खमीर मिलेगा, इन्फेक्शन होगी, लाइफ इंपल्स मिलेगी, एक बार। दूसरे अगर फर्ज करो आपकी प्रीति है। हम मरकर कहां जाते हैं? जहां आशा तहां बासा। अगर हम दुनिया में लंपट है, बाल बच्चों में, स्त्री रुपए पैसे जायदादों में, तो क्या है? गुरबानी में आया है, अंतकाल जो लक्ष्मी सिमरे है, कि अंतकाल जो लक्ष्मी को सिमरता है वो प्रेत जो बलबल होता है, वो प्रेत मानकर उन मकानों में वास करता। जो लड़के सिमरता है वो ऐसी जूनियों में जाता है जहां बच्चे पैदा करने सुअर आदि का, तो जैसे कि वहीं जाएगा जहां सता वासा। अगर आपका तल्लु किसी जागते पुरुष की संगत में लग गया, आप मरकर कहां जाएगा? सोचने की बात। रूलिंग पैशन बन जाए जहां वो जाएंगे। अगर वो मुक्त पुरुष है तो हम कैसे जन्म मरण में जा सकते? तो ये असूल है। अगर दुनिया में लंपट है, जिसके साथ हम लंपट हो रहे हैं वो जहां जाएगा हम भी साथ जाएंगे, संस्कार रहेगा। तो कहते किसी जागते पुरुष में प्यार पैदा करो, उसकी संगत प्रीत करो सत्संग में, कि उसका फल क्या होगा? फरमाते हैं गुरु फिर रंग दे नाम अरंग में। वो अनुभवी पुरुष जो वहां है ना, वो आपको नाम के रंग में रंग देगा। वो कैसा रंग है? वो अरंग है जिस पर और कोई रंग नहीं चढ़ सकता। ऐसे रंग नाम के रंग में रंग देगा जिस पर फिर दुनिया का रंग नहीं चढ़ेगा। गुरु का काम यही है, नाम के रंग में रंग दे। नाम क्या चीज है? ये खास खास इस्तलाएं हैं, इनके खास खास माने। आम दुनिया जो इन इस्तलाओं से वाकुफ नहीं, वो महात्माओं के कलामों को सही मानों में नहीं समझ सकते। नाम की तारीफ संतों ने की है, परमात्मा नाम है। जितने नाम ग्रंथों पोथियों वेदों शास्त्रों में हैं, वो ऐसे नाम है जो ऋषियों मुनियों महात्माओं ने जो भी आज तक आए उस प्रभु के बोध कराने समझाने बुझाने के लिए बरते। ये अक्षरी नाम है। जिस चीज को ये अक्षरी नाम बोध करा रहे हैं वो ताकत है, कुछ और असल नाम हुआ। एक अक्षरी नाम हुआ, एक वो ताकत जिसको ये अक्षरी नाम बोध करा रहे हैं। नहीं तो दो चीजें हुई। तो गुरु तुमको नाम का जो अरंग, उस पर और कोई रंग चढ़ने वाले नाम नहीं, उस रंग में रंग देगा। कब? आप सवाल याद, कबीर साहब कहते हैं मन दिया कहीं और ही तन साधु के संग, कहे कबीर कोरी गजी कैसे लागे रंग। मन तो कहीं और दिया है, यहां बैठे आप, यहां मन कहीं बाहर भाग रहा है। फिर जो मंडल का असर है उसको भी हम नहीं लेते। अगर जब बैठो किसी महात्मा की सोबत में सत्संग में, ये समझो तुम बैठे हो या वो महात्मा बैठा, और कोई भी नहीं वहां। बस यक्षुई दिल से बड़े प्यार से बैठे। कहते कोरी गजी पर कभी रंग चढ़ सकता? जब यक्षुई दिल से बैठोगे मंडल का भी असर होगा, चीज भी समझ आएगी। हम लोगों को सत्संग करना नहीं आता। स्वामी जी महाराज फरमाते हैं सत्संग करो बनाए, सत्संग बना कर करो। वो बना कर करना क्या है? सब तरफ से हट हटा कर सिर्फ सत्संग में तवज्जो को टिकाओ। जो जागता पुरुष बैठा उसकी शोभ संग से फायदा उठा। वो क्या कहता? सुनो, हम सत्संग सुन जाते, पीछे याद नहीं रहता क्या हुआ था। सत्संग में बैठे हैं, मन कहीं और दौड़ रहा, और बातें सोच रहा, वो खेपता में है मन, फिर ऐसी संगत का क्या फायदा? पहले बात तो यह है कि हम लोग सत्संग में आते हैं, देखो घर बार से रुख सुत की, बड़ा मुश्किल है घर से, घरों से ग्रस्त आश्रम में घरों से निकलना। घर से निकले, बाहर निकले, फिर भी घर की झंझट साथ है। भाई घर को छुट्टी करो, जितनी देर से संग में बैठे हो, जो आए हो, सब तरफ से ख्याल को हटा तो या प्रभु की याद, याद बही पुरुषों की याद, या नाम की याद हो बस। मैं नहीं, बाद वक्त यही सत्संग मिलने जुलने के एक सेंटर से बन जाते बस, लोग ऐसी मेला बना लेते, इससे फायदा नहीं होगा। कहते वो जब यक रंग होकर बैठोगे, यक्षु होकर बैठोगे, तब आपको रंग चढ़ेगा, नशा आएगा, बात समझ में आने लगेगी। तो कहते सत्संग करो, सत्संग में प्रीति पैदा करो, सब तरफ से हटता कर। ये चीज कैसी है जो हमेशा तुम्हारी संगी और साथी है? सत्संग की मैं हमेशा आपके साथ रहने वाले। गुरु साहबों के वक्त एक वाक्य आया है, उसका असम मजमून है, इसलिए वो ये कि एक सिख था, वो मजदूरी किया करता था। उसका कोई मजदूरी जितना मर्जी काम कराए, लेना एक टका। एक बनिया कोई सेठ या साहूकार एक गांव में गया, रुपए शुपये लेने देने थे, हिसाब करते कराते देर हो गई, अंधेरा पड़ गया, अंधेरा पड़ गया। तो अब सामान था, बई भारी थी, उठाने वाला कोई नहीं था, सोचना कोई आदमी मिल जाए तो सामान ले चले। इतने वो सिख वहां से गुजरा, कहने भाई मजदूरी करेगा? कहते हाँ महाराज करूंगा। क्या लोगे? कहते एक टका। खुश हो गया, भाई टके में काम बनता? कहते मगर मेरी एक शर्त है। वो क्या? कि रस्ते चलते हुए या तुम प्रभु की बातें सुनाते जाना या मेरी सुनते जाना, एक एक बात करने, ये जरूरी शर्त। उन्होंने कहा भाई मुझे तो आती, मैं सुनता चलूंगा। चलो अच्छा, बहुत अच्छा, चल पड़े, सामान सिर पर उठा लिया, चलते कह रहे हाँ भाई सुनाओ शेर साहब। वो क्या सुना है? कि अच्छा भाई नहीं तो सुनो, घंटा दो घंटे रास्ते में लगे, पहुंच गए जहां पहुंचना था, सामान रखा, वापस आ गए। वापस आने ख्याल आया कि अरे भाई इसको कुछ कह जाना चाहिए, अनभी पूछता वो भी। वापस गया, देख शेर साहब तेरी एक, अगर एक हफ्ते के बाद मौत, तेरे सारे जीवन में कोई अच्छा काम तुमने नहीं किया, सारे लोगों के गले काटे या खून निचोड़ा। ये दो घंटे जो यहां घंटा दो घंटे प्रभु की बातचीत सुनी है, इसी का फल तुमको सिर्फ मिलना, यही एक नेक कर्म है तेरे भागों में। तो जब तुम मर जाओगे, धर्मराज तुमसे पूछेगा कि भाई तुम्हारे सारे जीवन में यही एक नेक कर्म है, बताया इसका फल तू पहले लेगा कि पीछे लेगा? तूने कह देना कि मैं पहले लूंगा। ऐसे हुआ, हफ्ते के बाद उसकी मौत हो गई। जब धर्मराज ने पूछा स्वामी भाई तेरे जीवन में सिर्फ एक ही चीज है नेक कर्म, बताया इसका फल पहले लेगा पीछे? कह रहे जी पहले ही दे दो। कहते वो रामराज या जो कुछ थे यमराज गए बाहर, उस स्थान में पहुंचा दिया कि ये भाई प्रभु की याद की जगह है, जाओ तुम बर घंटे के बाद बाहर आ जाना जरूर, वहां बैठना ठहरना नहीं। वहां गए तो देखा वही महात्म वहां भी बैठा। महात्मा हर जाई होता, जो सच में चंद वही पुरुष है वो एक जगह कई जगह काम करते। वहां बैठे, क्यों भाई आ गए? कि हाँ महाराज आ गया, बैठ जाओ। बैठ गया, अब उसको फिक्र है घंटा होने लगा है, बाहर ख्याल गया भाई क्या करता है, घंटा होने वाला है बाहर खड़े हैं। कह रहे फिक्र न कर, आगे घंटे का फल ये मिला तो इस घंटे का भी तो फल मिलेगा। तो मेरे अर्ज करने का वाला है कि सत्संग की महिमा बड़ी जबरदस्त है, मगर सत्संग किसी जागते पुरुष की सोबत करना। ये मौलाना रूम साहब ने कहा, हमने शीनी सायते बावलिया बेतर सत्सालता मेरे यहां। अगर तुम किसी वली अला के पास एक घड़ी बैठ जाओ, 20 मिनट की होती है घड़ी, 100 साल बेर या भक्ति से ज्यादा है उसका फल। 100 साल बगैर दिखावे की भक्ति भी हो, उसका कारण एक चीज आपके पास आप बैठ गए, एक लकड़ी छीन कर रगड़ने लग गए, तो अनभी पुष्प के पास बैठने का बड़ा भारी फल। तो कहते हैं आप प्रीति पैदा करो, आपकी आत्मा ने तो कहीं लग कर ही रहना है ना। بجائے اس کے کہ آپ جسم کے پالنے پوشش میں لگے رہو یا بال بچے جیسے دنیا کے سامانوں میں لمپٹ رہو, یہ کام بھی کرو تم جسم رکھتے ہو, جو دینا لینا خوشی سے دو, مگر ارے بھائی وہ کون سی چیز ہے جو تمہارے کام آنے والی, کہتے وہ ستسنگ ہے, کسی جاگتے پوچھ کی صحبت اور سنت ہے, اسے پیار پیدا کر, اسے کیا ملے گا, نام کا رنگ ملے گا. نام کے متعلق میں بیان کر رہا تھا کہ ایک اکشری نام ہے, ایک وہ چیز ہے جس کو کہ اکشری نام بودھ کرا رہے ہیں, وہ اصل چیز ہے. پانی کہو, جل کہو, نیر کہو, واٹر کہو, ایکوا کہو, یا اور کوئی لفظ کسی زبان میں ادا کرو, ان اکشروں کے اچارن کرنے سے پیاس نہیں بجھے گی, ان اکشروں سے چل کر جن کو یہ اکشر بودھ کرا رہے ہیں نا, اس چیز کے ساتھ لگو تب پیاس بجھے گی, ٹھنڈک آئے گی. تو رام رحیم اللہ واحد خدا انیکو نام جو ہے یہ اکشری نام ہے, کسی ایسی طاقت کے جو سب کھنڈوں برہمنڈوں کی بنانے والی ہے اور ذرے ذرے میں سما کر سب کو آدھار دے رہی, ان ناموں سے چل کر اس کے ساتھ جڑنا وہ پریپورن ہے. نام کے دھارے کھنڈ برہمنڈ, نامے ہی تے سب جگ ہو, آپ بن سدگر نام نہ جا پائے, سارا جگ سدگر نام نہ جا پا, سارا جہان اس نام نے بنایا, وہ پرماتما نام ہے, انٹو بینگ آیا, ہستی میں آ کر اس کا نام نام ہوا, وہ نام سب کھنڈوں کے برہمنڈوں کے بنانے والا, اس نام پاور کے بودھ کرانے کے لیے انیکوں نام. تو بلے ہار جاؤ جیتے تیرے نام, ہم سب پر قربان ہیں بھائی, جتنے نام بھی ہیں اس پربھو کے بودھ کرانے کے لیے ہیں, مر اس کا تو کوئی نام نہیں. مولانا روم صاحب نے کہا بنا میں ہوں کیوں نام ندارد, باہر نامے کے خانی سر برار, اس کے نام سے جس کا کوئی نام نہیں, جب بھاو سے کسی نام سے اس کا اچارن کرو تو کہتے ہیں کہ اس نام پاور کے ساتھ لگنے کے لیے کون سی چیز ضرورت ہے, کہتے کسی انبھوی پرش کی صحبت اور سنگت, اس نام کا رنگ اور نشہ ملنے لگ جائے گا, نام میں بڑا بھاری سرور ہے, آنند ہے, نام خماری نام کا چڑی رہے دن رات, اس میں خمار ہے, نشہ ہے, ایسا نشہ جو کبھی بھی اترنے والا نہیں, وہ نشہ کہاں ملے گا, جاگتے پوشوں کی صحبت میں, ہدایت سے تھیوری کو سمجھائیں گے, پھر بٹھا کر کانٹیکٹ دیں گے, کوئی جن ہرسو دے جاؤں گے, وہ کہاں پر ہے, ذرے ذرے میں سما رہا, جیتا کیتا تیتا ناؤ ویڑنا وے نہ کو تھا, جتنا کیا ہوا پسارا یہ سب نام کا ہے, کوئی ایسی جگہ نہیں جہاں پر یہ نام نہ ہو. اب اس نام پاور کے ساتھ لگنا, ذرے ذرے میں سما رہا ہے مگر اس کا ڈیوائن لنک ڈائریکٹ کہاں پر آپ کو کانٹیکٹ ملے گا, کہ تو وہ آپ کے گھٹ میں ہے, نو ندی امرت پرب کا نام دہی میں اس کا بیسا ہوں, نو ندیوں کے دینے والا پربھو کا نام ہے, اس کا باسا آپ کے گھٹ میں ہو رہا, اور کہاں پر, انیوں کے گھاٹ سے اوپر, سمجھے, اس کایا نگری اندر منگن چڑھے یوگی تا ناؤ پلے پائے, اے یوگی اگر اس کایا نگری میں تم منگنا چڑھنا سیکھ جاؤ, نیچے چکروں کو چھوڑ کر اوپر آ جاؤ, پھر نام ملے. سو یہ نام جو ہے نا, اس کے نام کے دھیانے سے جیووں کی کلیان ہے, جنی نام تہایا گئے مشقت کا حال, نانک تے مخجلے کتی چھٹی نام, جنہوں نے نام کو دہایا ہے, انترات میں کانٹیکٹ کیا ہے, جڑے ہیں, ان کے جیون کی مشقت سفل ہو گئی, ان کے اپنے مکھ مالک کی درگاہ میں اجلے ہو گئے, ان کے ساتھ اور انیکو جیووں کا ادھار ہوں گے, یہ نام کی نام, مگر اس نام کے ساتھ لگتا کون ہے, تھوڑ کرم پایا تد جن کو سے نام ہر کے لگا ہے, کہ مالک جس کو آپ تو دھر سے دیا کرے, وہ اس نام کے ساتھ لگتا, کیا ملتا ہے, کون لگتا ہے, سکھ ہوا, اس سے سکھ اور شانتی ملتی ہے, کیا نشانی ہے اس کی, تت کر انہد واجے, انہد کی دنیا جاگ اٹھتی. تو سب مہاتموں نے اس کا ذکر کیا, नाम की महिमा सबने गाई है, बिन गुरु पूरे कोई न पावे, लख कोटि जे कर्म को है। कर्मों का तलक इंद्रियों के घाट से है, ये अदृष्ट गोचर नाम पारा। जब तक इंद्रियों के घाट से ऊपर जाए नहीं, नाम के साथ कैसे तलक होगा। अप्रविद्या के साधन आप सारी उम्र करते रहो, इस राज को नहीं पाओगे। उससे जमीन की तैयारी है, दया का काम करते हैं, शरीयत नेक पाक बनो, सदाचारी बनो, मिलो किसी अनुभवी पुरुष की सोबत को हासिल करो, वो आपको नाम के साथ अंतर्मुख जोड़ देगा, उसका कांटेक्ट कराएगा। नाम की फिर आगे मैं उसमें ज्योति है, नाम जपत कोट सूरज ज्यारा बिन सह ब्रह्म देना, नाम में श्रुति है, उद्गीत हो रहा है, आकाशवाणी हो रही है, नाद हो रहा है, दोनों चीजें अंतर में कांटेक्ट मिलती है। उसके सुनने से, उसके देखने से मन को शांति और तृप्ति हो जाती है। नाम मिलिए मन तृप्ति है, बिन नामे त्रिग जीवास, हजार बार लानत ऐसे जीवन को जिसको मनुष्य जीवन पाकर नाम का तलक नहीं मिला। तो स्वामी जी महाराज फरमाते हैं, अरे भाई तुम चेतन हो, चेतो, जागो, होश में आओ, अपनी प्रीति पैदा करो किन में, कहते अनुभवी पुरुष की संगत में, सत्संग में। तो वो क्या करेंगे, कहते तुमको नाम का ऐसा रंग चढ़ा देंगे जिस पर कोई और रंग नहीं चढ़ेगा।
धन संपत तेरे काम न आवे, छोड़ चलो ये छिन में।
कहते धन और संपत्ति ये भी तेरे काम आने वाले हैं, छिन मात्र में जब रूप पिंड से जुदा होगी ये सब यही रह जाए। पाकिस्तान में हम सब कुछ छोड़ा है कि नहीं, जाने बचाकर भी मुश्किल से आए, डाकू लूट कर ले जाते हैं, इनका तो एतमाद ही, हमने अपनी आंखों से देख लिया। फिर कई बार तो जीते जी भी छूट जाते हैं, नहीं तो हद जिस्म के साथ और क्या है। मगर हमारा दीन ईमान दुनिया बनी पड़ी है। मैं जब रिटायर हुआ मुझे पूछने लगे कि भाई तुमने कितने मकान बनाए हैं, मैंने कहा भाई मैं कोई मकान नहीं बना सका, भाई जिन्हें बांट कर खाने वो रुपए कहां से जमा करेगा। पाप न करे, नेक नीति की कमाई रहे और बांट कर खाए दुखी दर्दों में, उसके पास रुपया कहां से होगा, भाई मैं नहीं बना सका। अच्छा कितना रुपया जमा किया, भाई रुपया मेरा प्राइवेट फंड में है थोड़ा, बाकी नहीं। तुम बड़े बेवकूफ हो, ठीक है पाकिस्तान बन गया, सब छोड़ छाड़े लोगों ने, रुपए लेकर सब जायदादें मकान आती, ज्यादातर लोग यही कहते हैं यार रुपया जमा कर लिया या वो कर लिया। यहां जब आए तो कहने भाई आप बड़े सियाने थे, दुनिया के क्या है भाई, किसके साथ गई और जा सकते, जब शरीर साथ आता ये नहीं जाता, इसके सामान कैसे जाए। हमें यही बात भूल गई, बात तो थी अगर ये याद रहे कि जीना झूठ है और मरना सच है, फिर कुदरती बात हम ऐसी चीज से लौ लगाएंगे जो हमेशा रहने वाली। नदरी आवे तांसो मो, इव क्यों मिलिए प्रभ अविनाशी, तो जो नजर आ रहा है उससे हमारा मोह लगा पड़ा है, उसमें हम लंपट हो रहे हैं। हे मालिक तू तो अविनाशी है, नाश रहत है, तेरे साथ कैसे बनेगी। जब नाशवान चीजों में लग गया सोचने तो एक वक्त एक ही काम करना, ये मन तो एक था, इसे जो चाहे कर लो, पावे गुरु की भक्त कर तो पावे अभिषेक मा, और क्या कर सकते। तो कहते ये धन संपत्ति तेरे काम आने वाले नहीं, शिन मात्र में छोड़ना पड़ेगा।
आगे रैन अंधेरी भारी काज करो कुछ दिन में।
कहते आगे क्या होने वाला है इसके लिए एक अंधेरी रात है आपके लिए, जिस जिस्म को छोड़ने के बाद क्या होगा उसका फिक्र करो भाई। इन तो छोड़ना है ना, जीते जी छोड़ो। कब इस बात को जान लो आगे क्या होने वाला, अंधेरी रात आने वाली है, इसलिए कुछ काम करना तो जीते जी जिंदगी में, जब दिन दिन है तब कर लो। जब अंत समय आएगा उसे गिरते मर जाओगे, आगे पता नहीं कहाँ जाना। अगर जीते जी एक आदमी जिंदगी में जिस जगह जाना पहले फिर आए और वहां जाना सीख जाए, गुरुमुख आवे जाए निशंक, उसको मौत का क्या खौफ रह सकता। मरने ते सब जग गए जीविया लोड़े सबको, गुरु प्रसादी जीवत मरे ता हुक्मे बूझे को। मालिक के हुक्म के बूझने वाला हो जाएगा। वो हुक्म क्या है वो बयान में नहीं आ सकता। गुरु नानक साहब जी से पूछा गया कि महाराज हुक्म बयान करिए, हुक्म क्या है। फरमाने लगे हुक्म न किया जाए तो बयान में नहीं आ सकता। हुक्मी हो नाकार, हाँ वो चीजें जो उसके हुक्म के अंतर चल रही है उसका बयान तो है। सारे आकार वाली चीजें थूल सूक्ष्म कारण महाकारण सब हुक्म के अंतर। हुक्मी हो जी हुक्म मिले वड़ियाई, हुक्मी लिख हुक्मी उत्तम नीच, हुक्मी लिख दुख सुख पाइए, इकना हुक्म बख्शी सिख हुक्मी सना बुहाइए। फिर सारी चीजें उसके हुक्म के अंतर चल रही है। कहते कोई निशानी ऐसे पुरुष की जिसने उस हुक्म को जाना हो, कॉन्शियस को वर्क डिवाइन प्लान का बना हो, कोई निशानी है क्या? हाँ, नानक हुक्मे जे बजे ता हो मैं कहने को। वो हो मैं नहीं कहता, मैं करता नहीं, वो कर रहा, वो देखता कर रहा। इसीलिए संतों की वाणी में कहीं भी ये मैं का सवाल नहीं आता है, वो मालिक कर रहा, मेरा गुरु कर रहा। उसका कारण क्या कि उनकी आंख खुली है, वो देख रहे हैं कि वो कर रहा। तो फरमाते ता हुक्म बूझे को, नानक ऐसी मरनी जो मरे ता सद जीवन हो। अगर जीते जी मरना सीख जाए, पिंड से ऊपर आना सीख जाए, मौत और होती क्या। पिंड को ही रूह छोड़ती है ना, हमें छोड़ना नहीं आता, इसलिए मौत से डर है। कहते अगर जीते जी गुरु की कृपा से गुरु प्रसादी जीवित मरे ता हुक्मे बूझे को, हुक्म के पहचानने वाला डिवाइन प्लान का कॉन्शियस को वर्कर हो जाएगा। तो कहते अगर ऐसी मरनी सीख जाए जीते जी ता सद जीवन, हमेशा की जीवन एवरलास्टिंग लाइफ को पा जाए। तो फरमा रहे हैं बड़े जोरदार लफ्जों में कि धन संपत्त तेरे काम ना आवे, छोड़ चलो ये चिन्ह में, आगे रहना अंधेरी भारी, काज करो कुछ दिन में। अभी भाइयों कुछ कर लो। मुनो जी उन हाथों से निकल गया, पौड़ी छुड़की फिर हाथ ना आवे, ऐला ये दूंगा। एक बार मनुष्य जीवन हाथों से निकल गया तो फिर याद नसीब, कब मनुष्य जीवन फिर मिले तो फिर ये काम कर। जब तक मनुष्य जीवन नहीं मिलता क्या कर सकते। जी
ये दे ही फिर हाथ ना आवे, फिरो चौरासी बन में।
कहते ये मनुष्य जीवन एक बार हाथों से निकल गया फिर याद नसीब कब मिले, चक्कर खाओगे जहां असत बस और क्या। अगर मनुष्य जीवन में ही हम ये काम कर सकते, इसमें इंसान के अंतर आकाश तक प्रबल है, विवेक सत्य और असत्य का निर्णय कर सकता, सत्य को ग्रहण भी कर सकता है, सत्य की तरफ से मुंह मोड़ सकता। अगर मनुष्य जीवन पाकर किसी अनुभवी पुरुष की शोभ संगत मिल गई, उसकी हदायत के मुताबिक सत्य का कांटेक्ट मिल गया, उसके साथ जुड़ गया लग गया, तो कहां जाएगा मरकर, प्रभु के पास। तो मनुष्य जीवन ही एक ऐसा जीवन है जिसमें हम उस प्रभु को पा सकते हैं, और कोई नहीं। कहते एक बार ये जीवन हाथ से निकल गया फिर क्या है, फिर चक्र है सामने और क्या हो।
गुर सेवा कर गुरु रिझाओ, आओ तुम इस ढंग में।
कहते मनुष्य जिन मिला है सत्संगत में प्रीत पैदा करो, जागते पुष्प की सोबत संगत करो, वो नाम के रंग अरंग रंग में तुमको रंगेगा। तो हमारा बड़े से बड़ा काम दुनिया में क्या रहा कि ऐसे अनुभवी पुरुष की सेवा में लग जाओ, जो वो कहे उसके मुताबिक जीवन बनाओ, नेक पाक बनो, सदाचारी बनो, और नाम जपो, पिंड को छोड़ो, नाम के साथ लगो, प्रभु से जुड़ो। ये उसका उपदेश, यही सेवा। सदगुरु की सेवा कौन सी सफल होती है? सा सदगुरु की सेवा कीती सफल है, जित गुरु का मन, सदगुरु का मन बने, दिल की रुचि खुशी हो। उसकी सबसे बड़े खुशी किस बात में है? प्रभु के जुड़ने में, नाम के रंग में। जहां सदगुरु का मन बनिया तां पाप कसमल पने, अगर वो खुश हो गया सारे पापों का नाश हो गया, तो खुशी बड़ी भारी चीज। तो कहते सेव का करो, ऐसे महापुरुष सत्संगत में प्रीत पैदा करो, अनुभवी पुरुष की सेवा में लगो। सेवा क्या है? कई प्रकार की सेवा, तन करके, धन करके, मन करके, सुरत और नित करके। तन करके क्या है? इससे विषय विकारों से बचाओ, समझे, भजन में लगाओ, बुरे कामों से हटाओ, ये तन की सेवा। ये हरि मंदिर है, इसको साफ और स्वच्छ रखो। धन की सेवा क्या है? नेक कमाई करके कुछ न कुछ भूखे नंगे प्यासों को सबके लिए परमार्थ के लिए खर्च करो। मन की सेवा क्या? किसी का बुरा चितवन न करो, अहिंसा परमो धर्म, सत्य को धारण करो मन करके, नेक पाक रहो, निष्काम सेवा करो, सबके अंतर परमात्मा, किसी से नफरत न करो, ये मन की सेवा। सुरत और नृत्य की सेवा क्या है? हमारी सुत पिंड का रूप बनी बैठी है, इसको पिंड को से ऊपर लाओ, अंतर नृत्य को खोलो, ये सुरत और नृत्य की सेवा। ये सेवा सब सेवा में से अफसल सेवा, जिससे अनुभवी पुरुष खुश होता। जब अनुभवी पुरुष खुश हो गया, सब जो प्रभु खुश हो गया। तो स्वामी जी महाराज ने एक जगह बड़े खुले लफ्जों में फरमाया है, गुर राजी तो करता राजी। अगर अनुभवी पुरुष राजी हो गया, समझो परमात्मा राजी हो गया। कारण अनुभवी पुरुष है कौन? वो जिस्मानी पोल है जिस पर प्रभु प्रकट हो चुका, उसकी आत्मा उसे मिल चुकी है। तो वो जाहिर शक्ल काम करती तो नजर आती है, मगर उस मालिक के हुक्म के अंतर काम करती। उसका खुश होना प्रभु का खुश होना। प्रभु जब खुश होता है तो ऐसी जीव ऐसी हस्ती को मिला देता है जिस पोल पर वो प्रकट हो चुका है। सब में कोई ऐसा हृदय नहीं जिसमें वो ना हो। सबो घट मेरे साइया, सुनी से न कोई बलिहारी, तिस घट के जहां घट प्रगट हो। है सबके अंतर, मगर जिस घट में वो प्रगट हो गया वो बढ़ा जाने के काबिल। तो फरमा रहे हैं बड़े प्यार से कि हमारे जीवन का सबसे बड़ा मकसद क्या होना चाहिए? सत्संग में प्रीत पैदा करो, अनुभवी पुरुष की सेवा में लग जाओ, जैसा वो जीवन कहे वैसा बनाओ, और उसको उसको राजी रखो, उसकी खुशी हासिल। कौन उस्ताद किस लड़के पर खुश होता? जो लड़का सबक याद करके आए उस पर खुश है। मैं जब स्कूल में पढ़ा करता था, क्योंकि आम ज्यादा किताबें पढ़ने का शौक था, जो कोर्स पढ़ाया जाता था उस कोर्स में कभी टच नहीं करता था। नहीं तो आम ये कहते हैं लड़के जो सबक पढ़ना पहले लफ्ज डिक्शनरी से लिख लगा कर तैयार करके ले जाते थे। मैंने कभी तैयार नहीं किया था। एक दिन एक लड़के ने सबक तैयार न किया, हेडमास्टर थे वो बड़े नाराज हुए और कह रहे जी हमको आप नाराज है, एक दिन नहीं करके, इसके पास तो कॉपी नहीं है, ये कभी भी तैयार करके नहीं आता। तो कह रहे ये किताब में जो कुछ हमने नहीं पढ़ा वो भी ये जानता है, इसलिए खुशी हुई कि नहीं? उस्ताद के अच्छा भी तुम मेरे घर भी आ जाया करो। तो मेरे घर करना क्यों? उस्ताद किस लड़के पर खुश होता है, जो उसका हो, जो वो चाहता है वो करे, उसके इशारे पर चले। उस्ताद चाहता है कि लड़का लायक हो, अगर वो लियाकत इजहार करता है तो उस्ताद खुश है। तो कहते गुरु की खुशी हासिल करो, उसकी खुशी वो बड़ी भारी चीज। यक नगाए जाम फुदाश बस बस दरकार है, उसकी एक नजर जान के उभारने वाली। कहते हमारे लिए का उसकी जिंदगी का उभार देने वाली चीज है। गुरु कोट उधारदा देना में एक कणी, कारण क्या उसके अंदर एक सत्य है, शांति है, प्रेम मुजस्म है, उसकी एक नजर से उभार मिलता। हमारे अंदर काम क्रोध के वेग चल रहे हो तो जैसे वो होगा वैसे ही असर देगा ना दूसरे को, कुदरती बात है। तो कहते हैं उसकी सेवा करो, मनुष्यन पाकर किसी अनुभवी पुरुष सत्संग में प्रीत पैदा करो, और अनुभवी पुरुष जो कहता है उसके मुताबिक जीवन बनाओ, ये सबसे बड़ी बात है। इफ यू लव मी कीप माई कमांडमेंट्स, क्राइस्ट ने कहा क्या भाई अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो जो मैं कहता हूं उसको मानो। अगर तुम किसी महात्मा को मत्था टेकते हो, मत्था टेकना या ना अदब करना अच्छी बात है, मगर उसे कल्याण नहीं। कल्याण किन लोगों, जो बचनों पर मत्था टेकते, जो वो कहते हैं सतगुरु बचन, बचन है सतगुरु, जो वो वचन कहता है उस पर जो मत्था टेकते उसकी कल्याण। ये गुरुवाणी में कहा गुरु डिठिया मुकुत न होए, बड़े लफ्ज साफ कहा, गुरु के देखने से भी मुक्ति नहीं मिलेगी। सदगुरु नु देखदा जेता को संसार, गुरु डिठिया मुकुत न होई जिचे सदगुरु शब्द न धरे प्यार। जिस शब्द बाहरी और अंतरी जिसके साथ वो जोड़ता, जब तो उसके साथ ये प्यार नहीं करता, देखने से मुक्ति नहीं। अरे भाई गुरु नानक साहब आए, सैकड़ों हजारों लाखों ने शायद देखा उनको, मगर किन की कल्याण हुई जिन्होंने उनके हुक्म को माना। वो भी तो लोग थे ना, कसूर शहर में उनको दाखिल नहीं होने दिया। तो मेरे अर्ज करने का मतलब है कि खाली दर्शन से कल्याण नहीं, भाव के साथ प्यार से करो, जो वो कहे वो करो, तुम्हारी कल्याण होगा। दे
गुरु बिन तेरा और ना कोई धार, बचन ये मन में।
कहते गुरु के बगैर भाई तेरा सच्चा मित्र कोई भी नहीं, ये आपने हृदय में तू धारण कर रहे। और ठीक है, जो अनुभवी पुरुष है वो तुमको यहाँ हर एक पांदे का काम भी करता है, अपनी तवज्जो से भी मदद करता है, पहाड़ों जंगलों बियाबान में जाओ तुम्हारे सिर पर वो सहायता करता है, जिसम छोड़ो अगले मंडलों में जाओ तो वहां आ खड़ा होता है। कितना भारी काम है। बातो बाश धर्म कानो लाम का, जो तुम्हारे साथ रहे इस दुनिया में, अगर जीते जी पिंड से ऊपर आओ तब वहां आ खड़ा होगा, अगर मरकर जाओ तो भी आ जाए, अंत समय सामने आ खड़ा होता। नानक कचड़िया संग तोड़, ढूंढ सज्जन संत पकिया, ए जीविंदे विछड़े ओ मोया न जासन छोड़। ए नानक तू कच्चों का संग छोड़ दे, पक्के सज्जनों को तलाश कर। कहते वो कौन, कहते वो संत जन है। सज्जन किसको कहते, आद मद जो अंत निवा है, सो साजन मेरा मंचा है, जो आदि के अंतर आप अंत समय हमारा संगी साथी रहे उसका नाम सज्जन। और वो कौन है, ये जीविंदे विछड़े, दुनिया के सज्जन मित्र ये वो, ये जीते जी तुमको छोड़ जाएंगे, कोई बीमारी में, कोई नादारी में, कोई लाचारी में, कोई मुश्किलों में फंस जाने में छोड़ जाएंगे। हद बहुत सदाचारी भी हो तो हद अंत समय था, रूप पिंड को छोड़ेगी, तुम घिड़कते मर जाओगे, वो खड़े के खड़े रह जाएंगे, तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकते। जो अनुभवी पुरुष है वो सामने आ खड़ा होता है, उस वक्त तकलीफ कोई महसूस नहीं होती, हंसता हंसता चला जाता, खुशी खुशी जाता। मौत तो दोनों को आती है, ये नहीं कि उसको नहीं आती। एक बिल्ली का बच्चा है, वो बिल्ली के मुंह में जा रहा है, कितने प्यार से वो उसको ले जाती है। एक चूहा उसके मुंह में जा रहा है, फर्क है कि नहीं? मौलाना रूम साहब ने कहा, कहते एक तो घिड़कते मर जाती है और दूसरे जो शकर मीरन मीठी तरह से मरते हैं, वो माशू की गोद में चले जाते हैं। कितना भारी फर्क है। और गुरबानी में इस बात का और भी निर्णय किया कि हमें क्या करना चाहिए। सच्चा सदगुर सेव सच संभालिया, सच्चे सदगुर की सेवा करो और सच को संभालो, क्या नाम को जपो। अंत खुलोया आए जे सदगुर अगे कह लिया, जिसने सदगुर के आगे उसे हुक्म के मुताबिक अपना जीवन बनाया है, वो अंत समय सामने आ खड़ा होगा। आप बताएं, जब सारी दुनिया जवाब दे जाए, सामने एक हस्ती आग खड़ी हो, शांति ठंडक देने वाली, बताओ उसका कितना प्यार जागे। हमारे हजूर फरमाते थे कि अगर उस वक्त इंसान को इतनी खुशी होती है जितनी अपनी शादी की खुशी नहीं होती, किसी महात्मा का मिलना, उसे उपदेश लेना काफी नहीं, संभाल का सवाल। हमारे हुजूर फरमाते थे कि नाम देना या उपदेश देना तो चरखा काटने वाली लड़की भी दे सकते। बस सवाल तो संभाल का है। अंत समय जीते जी भी पिंड से ऊपर आए, अंतर संभाल हो, मरकर भी संभाल हो। कहते अगर नाम लेकर संभाल नहीं है या कोई तजुर्बा नहीं जागता, ऐसे गुरु और नाम दोनों को सलाम। तो ये है तारीफ महापुरुषों की, सत्संगत की, नाम की। ऐसे ही महापुरुषों की महिमा वेद शास्त्र ग्रंथ पोथियां आज दिन तक गाती रही हैं। समझ, सौ काल महात्मा की नहीं जो आज गुरुडम करके बदनाम हो रहा। सच्चा महात्मा कहीं कहीं, अनुभवी पुरुष जिसे अनुभव मिले, आगे भी कामयाब थे, अब भी कामयाब, पराविद्या के महात्मा बहुत कामयाब। राजा जनक को सारे हिंदुस्तान के ऋषि मुनियों महात्माओं में से सिर्फ एक अष्टावक्र मिले जो अनुभव करा सका ज्ञान का, बाकी सब महात्मा तो थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, मगर अनुभव ना करा सके। तो आज भी ये कोई हजारों में थोड़े हैं, मगर जब तक ऐसी हस्ती नहीं मिलेगी काम नहीं बनेगा। बात दे,
जगत जाल में फंसो ना भाई, निश दिन रहो भजन में।
यदि वो महापुरुष के बगैर आपका सच्चा संगी और साथी रक्षक कोई नहीं है स्वाय अनुभवी पुरुष के, कहते ये वचन मन में धारण कर लो। वो क्या कहता है, क्या करो? वो कहते हैं जगत जाल में भाइयों ना फंसो। वो ये नहीं कहते फंसो नहीं, ये नहीं कहते कि जगत जाल को छोड़कर किनारे जा बैठो, वहां भी तो जगत है भाई। जंगलों में जाओ तो वहां जगत नहीं, वहां भी तो जगत है। कि जगत में रहो मगर रहते हुए इसके जाल में ना फंसो। जगत में फंसाने वाला जाल कौन सा? ये इंद्रियां, ये इंद्र जाल है, इससे ऊपर रहो काम बन जाए। बी इन दी वर्ल्ड येट आउट ऑफ इट, दुनिया में रहो मैं दुनिया में रहते हुए दुनिया से आजाद रहो। बी इन दी वर्ल्ड येट आउट ऑफ इट, दुनिया में रहो मैं दुनिया में रहते हुए दुनिया से आजाद रहो। काम करो, जिस्म रखते हो, बाल बच्चों को पालो, लेना देना खुशी से खत्म करो, पढ़ो लिखो विचारो, बुद्धि के पहलवान बनो। अरे भाई तुम आत्मा हो, आत्मा को भी तो जानो, अपने आप को जानो। जिसने उसको जीते जी जान लिया समझो वो उसके जीवन सफल हो। क्यों? कि जिसने अपने आप को जाना वही परमात्मा का अनुभव कर सकेगा, क्योंकि आत्मा ने अनुभव करना है ना, न मन ने, न बुद्धि ने, न इंद्रियों ने, न प्राणों ने करना। खुद शिनासी, खुदा शिनासी, सेल्फ नॉलेज बड़ा भारी हेल्पिंग फैक्टर है, मददगार चीज है गॉड नॉलेज की। जिसको अपने आपे का ज्ञान नहीं हुआ वो प्रभु का ज्ञान कैसे पा सकता। तो प्रभु के ज्ञान पाने के लिए अनुभव करने के लिए अनुभवी पुरुषों की सोबत बस जिन्होंने पाया ये भगवान कृष्ण जी फरमा रहे। अगर तुम ज्ञान पाने के ख्वाहिशमंद हो किसी ऐसे महात्मा के पास जाओ जो आत्म तत्वदर्शी, ये मुसलमान फकीरों ने कहा। मर्द हाजीरा तलब खा हिंदू खा तुर्को खा अरब, अगर हज करने की ख्वाहिश है प्रभु के देश की तो क्या किसी हाजी को साथ ले ले जो हज कराया। कहते वो कौन हो? कहते खा हिंदू हो खा तुर्को हो या अरबी हो कोई फिक्र नहीं, हाजी हो जरूर। अनुभवी पुरुष हो खैर रविदास जवारी क्यों ना हो, इस बात का कोई सवाल नहीं। कबीर साहब जुलाही क्यों ना हो, मीराबाई रविदास चुमार के यहां गई है कि नहीं है? बादशाह जादी थी, राजा पीपा वगैरह गए रविदास जी के यहां, कबीर साहब के बघेल सिंह वगैरह राजे गए क्यों नहीं भाई? जिसको गर्ज है वो तो जाएगा। अनुभवी पुरुष के लिए ये जरूरी नहीं कि वो खास खत्रियो में हो या शूद्र में ना हो। अरे भाई खत्री ब्राह्मण शूद्र वैश्य तो हमने बनाए हैं, प्रभु ने कब बनाए? प्रभु ने तो कोई मोरे लगाकर नहीं भेजी, सब आत्मा देदारी बनाए। आत्मा की जात वही है जो परमात्मा की जात। तो किसी अनुभवी पुरुष जहां दीवा जलेगा वहां परवाने जाएंगे, खाए कसाई के घर के ना जगह। तो अनुभवी पुरुष की सोबत पैदा करो, उससे आपके जीव की कल्याण होगी। वो क्या कहता है? जगत जाल में फंसो ना भाई, फंसो नहीं भाई, काम तो करो पर फंसो नहीं। फंसने से कैसे बच सकते हैं? लंपटताई से गुरु युक्ति दिया इंद्र के घाट से ऊपर जाने की, रोज रोज अभ्यास कर, रोज रोज सफर करेगी, अंतर नाम का रस मिलेगा, बाहर के रस फीके पड़ जाएंगे। फर्ज करके तो अदा करोगे, मैं लंपटताई नहीं होगी। एक खजांची हो उसके बाद लाख रुपए आ जाए या चला जाए उसको क्या, उसका अपना तो नहीं ना। लाखों में दिन रात हिसाब करता है, मैं बेफिक्र होकर सोता। अपनी छोटी सी झोपड़ी हो तो कहते हो जल जाए बर्बाद हो गए। अगर उसका जिनके मकानात इंश्योर हो जाते हैं आग लग जाए कोई फिक्र नहीं भाई, चलो। तो इसलिए अपनी जिंदगी का बीमा करा लेना चाहिए। कैसा बीमा? मेरे पास एक बार कई भाई आए हैं, कह रहे भाई आप अपनी जिंदगी का इंश्योरेंस करा लो। मैंने कहा भाई मैंने अपनी जिंदगी का तो इंश्योरेंस करा दिया, आ गए जिंदगी का इंश्योरेंस करा लिया। तुम जो इंश्योरेंस करते हो वो मौत का करते हो, अगर 10 साल में मर जाओ तो इतना रुपया मिल जाएगा, मौत पर ही है ना। जिंदगी का बीमा कैसे होता है भाई? जान तो हमने देनी है, या यमों को देने, क्या अच्छा पहले किसी अनुभवी पुरुष के हवाले करना, ये बीमा होना। वो तुम्हारी जिंदगी का एक रक्षक बन जाता, उसके हवाले कर। अगर जीते जी किसी के हवाले जान हो जाए तो कोई और कौन लेगा भाई जी।
साध गुरु का कहना मानो, रहो उदास जगत में।
कहते साध गुरु का कहना मानो भाई, वो क्या कहता है? जगत में रहो मगर उदास चित रहो, उदासीन रहो। दुनिया हमेशा रहने की जगह नहीं, ना कोई रहा ना रह सकता। अगर आपको पता हो मैंने यहां 2 दिन के लिए आया हूं एक जगह, तो वहां कितना चित्त तुम लगाओगे आप बताओ? गुजारे गुजारे मात्र बरतो इन माही स्वामी जी महाराज कहते हैं, गुजारे के लिए तो कर लोगे, क्यों झगड़ना क्यों लड़ना? जिन्नी चलन जाने सो क्यों करे बिठा, वो इतने झूठ के पसारे वल फरे क्यों करेगा? समझे? कहते जगत में रहो मगर उदासीन रहो। चला जाना, जाना है जरूर जाना, झगड़ा किस बात का?
छल वल छोड़ो और चतुराई, क्यों तुम पढ़ो कुगत में।
कहते और भी कुछ करो क्या, छलवल को छोड़ दो। छलवल किसको कहते हैं, दिखावा कुछ अंतर से कुछ, फिर उसको छुपाने से कई झूठ फरेब साथ चतुराइयां करता। कहते ये दो चीजें छोड़ दो, अगर प्रभु को पाना है तो दो चीजों का त्याग करो, छलवल फरेब धोखा, ऊपर से कुछ अंतर में कुछ, ये छोड़ दो। फिर एक की बात उसको चतुराई से छुपाना चाहता है, एक झूठ बोला छुपाने के लिए दस और झूठ बोलने पड़े, ये दो काम छोड़ो। छलवल छोड़ो और चतुराई, क्यों तुम पढ़ो कुगत में, क्यों इस कुगति में जाते हो भाई। हाफिज साहब ने कहा कि इस तरफ परमार्थ में कामयाब होने के लिए क्या करना चाहिए, ये किन का काम है। कहते कारे यकरंग, इस तरफ जाना यकरंगों का काम है, समझे, बाहर और अंतर जिनका एक, दिल में कुछ है जबान पर कुछ है, फिर ऐसे पुरुष परमार्थ में कामयाब नहीं हो सकते। गुरु मिल भी जाए यकरंग नहीं, कारी बैठे शव मिले जे नियत रास करे, नियत ही रास नहीं, दिखावा कुछ और है करता कुछ और है, पर ऐसा पुरुष कैसे कामयाब हो सकता। कहते ये दो बातें छोड़ दो, छलवल और चतुराई, ये कुगति में ले जाएगा तुमको, तुम्हारी गति में हानिकारक होगा। हमारे हजूर का ये खासा था, कोई गुनाह हो जाए, जय महाराज मुझसे ये गुनाह हो गया, अच्छा, जैसे अपना बच्चा कहते मुझसे ये गुनाह हो गया तो पिता कहता है अच्छा भाई आगे मत करो। तो साहूगोई वाले हमेशा कामयाब हो जाते। एक महात्मा का हजूर किस्सा सुनाया करते थे, एक चोर था, वो किसी चोरी करने को गया, एक महात्मा ही था, उसके यहां एक घोड़ी बंधी हुई थी, वहां रात को पहुंचे कि घोड़ी खोल कर ले जाऊं। रात वो घोड़ी क्या करे, खोलता आगे से खोले पीछे बन जाए, पीछे से खोले आगे बन जाए, सारी रात इसी में लगी। सुबह 3-4 बज गए, महात्मा उठे, देखा एक आदमी है घोड़ी के गिर्द खड़ा है, पूछे ना अरे भाई तुम कौन हो। अरे महाराज मैं चोर हूं। अच्छा क्या कर रहे हो। महाराज सारी रात लगा रहा, बना कुछ भी नहीं, आगे से खोल तो पीछे बन जाती है, पीछे से खोल तो आगे बन जाती। अच्छा कोई बात, सो यही तुमको दे दे। उन महात्मा के यहां कुछ किसी गांव के कोई आदमी आए थे कि उनका जो कुतुब जो उनको सत्संग सुनाया करता था वो मर गया था, कि हमें कोई और ऐसा आदमी भेजो जो हमें सत्संग सुनाया करे। उन्होंने कहा अच्छा कल दे देंगे, ये रात का फिर वाक्या होता। सुबह सत्संग में बैठे, सारे बैठे थे, कब कब थोड़ा बहुत तो जानते हैं ना भाई, इनमें से कौन से किसको देंगे। तो जब उन्होंने कहा महाराज अभी कोई कृपा करो, कोई आदमी दो, अरे भाई उठो तुम जाओ वो ही घोड़ी पर सवार होकर चले। तो मेरे अर्थ करना है कि सदगुरु या किसी गुरु की या महात्मा की खुशी लेनी किसमें, यकरंग बनो। चतुराई और छल वाले को वो कुछ नहीं देगा, जाहिरदारी कुछ करे, बीच में कुछ करे, आगे कुछ हो, सामने तो मत थे के बीच से अभाव हो, दूसरों से बुरी बातें करता हूं मैं, अंतर में बैठे वाले को धोखा नहीं दे सकोगे, दुनिया को तो धोखा दे सकते। अपोल गुरु करतार, जो गुरु और करतार दो ही बोला है, वो रास्ता नहीं देना। तो कहते छलवल और चतुराई को छोड़ो, शांति हो जाए, दुनिया के आधे दुख मिट गए, और परमार्थ में कामयाबी की एक कुंजी। महात्मा को जो साफ गो आदमी वो ज्यादा पसंद, खाए पापी भी हो साफ गो, क्योंकि पापों का इलाज हो जाएगा। हमारे जो फरमाते थे कि जो आपने पाप करके छुपाता वो ऐसा जैसे दाना बन गया, वो छुपाता है उसमें फिर पाक पड़ेगी, खौलेगी, फिर मुंह से फूटेगा। तो पहले ही कहे उसका कुछ इलाज हो जाए। तो साफ गोई और साफ दिली परमार्थ में कामयाबी की एक बड़ा भारी फैक्टर, और गुरु की खुशनुदी देने के लिए बड़ी भारी एक जरिया। आप एक बार कितने बार किसी को धोखा, एक बार कुछ कहो, दूसरी बार कुछ और कहोगे, तीसरे बार वो दिल से नफरत करता। तो कहते दो चीजों को छोड़ दो भाई, छल वल छोड़ो और चतुराई। तुम क्यों पढ़ो कुगत भाई, इस कुगति में क्यों जाते हो भाई? नहीं,
सिमरन करो गुरु को सेवो, चल रहो आज गगन में।
कहते हैं क्या करो? कहते सिमरन करो। सिमरन परमार्थ के पाने का पहला जीना। सिमरन से कई फायदे हैं। दुनिया का सिमरन कर करके दुनिया हमारे घट में बस गई, बाल बच्चों का सिमरन कर करके हम दुनिया का और बच्चों का रूप बन गए, लंपटताई आ गई, मोह में बंधन में फंस गए। कैसे बसी दुनिया और बाल बच्चे हम में? उनका सिमरन कर करके। अब प्रभु के नाम का सिमरन याद करनी है तो प्रभु का सिमरन करो। उससे क्या फायदा होगा? दुनिया के सिमरन को प्रभु के सिमरन से काटना होगा। जो दुनिया हमें बस गई है उसको निकालने के लिए प्रभु का परबल सिमरन करो। समझे? कैसा सिमरन करो? एको जप, एको साला, एको सिमर, एको मना। एक ही को जपो, एक ही की सलाह न करो, एक ही का सिमरन करो। एक ही इतना जबरदस्त हो कि तुम्हारे अंतर से उसके हौके निकलने शुरू हो जाए। एको सिमर एको मना, एकस के गुण गाओ अनंत मन तन प्रीत जाप भगवन। उसी के अनंत गुण गाओ मन तन करके, प्यार और प्रेम से, पूर्ण भरोसे और विश्वास सिमरन। ऐसे सिमरन से क्या होगा? जपजी साहब में इसका दिन नहीं किया गया। एक दो जीवो लख होए, लख होए लखवीश, लख लख गेड़ा किए एक नाम जगदीश। समझे? एक जीव से लाखों जीवे हो जाए, कहते नहीं 20 गुना और ज्यादा हो जाए। इतने जीवों के साथ, इतने गेड़े के साथ प्रभु के नाम का सिमरन करो। क्या जबरदस्त सिमरन! ऐसे सिमरन में क्या हो गया? एतरा पत पौड़ियां चढ़ी हो कि इस रास्ते में ऐसा करने में पति के पहुंचने तक की ये पौड़ी है जीना। जो इसे चढ़ गए उसके साथ एक हो। तो सिमरन से रूह का सिमट कर ऊपर आना है। रूह का सिमटना ये पहला काम है। चल रहो आज गगन में। गगन की सुखते ये पिंड से ऊपर, यहां तक पिंड है, इसी ऊपर। रूह का ठिकाना कहाँ है? जिसमें आंखों के पीछे। आपने मते आदमी देखे हैं? नहीं, नीचे चक्कर टूटते हैं, कंठ बजता, आंखें फिर जाते हैं। अभी वो जिंदा जिसम मर चुका, इसका मतलब कि रूह का बल्ब यहां, जिसे सारे जिसम को सत्या मिल रही। कमरे में एक बल्ब जग रहा है तो उसकी रोशनी सारे कमरे में है। वो एक जाई है मगर हर जाई भी है कमरे में। ऐसे रूह का ठिकाना है जिसमें दो बहुमत पीछे है और इसे सारे जिसम उसकी सत्या लिविंग कर रहा, जीवंत कर रहा। तो अगर बल पर दो मोटे मोटे गिलाफ चढ़ा दो ताकि रोशनी की किरणें बाहर न जाए, कमरा अंधेरा हो जाएगा कि नहीं? ऐसे रूह को अगर एकत्र आंखों के पीछे कर लो, जिसम बेहस हो जाएगा और रूह सिमट जाएगा। तो इसके सिमटने के दो तरीके हैं। प्राणों को, योगियों ने प्राणों को भी साथ लिया, प्राण और सुर दोनों को समेटा। वो मुश्किल रास्ता है, हर कोई नहीं कर सकता, लंबा रास्ता। फिर जमाना हम उन साधनों के काबिल नहीं रहे, आयु के लिहाज से, बल पोष के लिहाज से। इसलिए संतों ने प्राणों को बीच से निकाल दिया ताकि आसान हो जाए, बच्चा बूढ़ा जवान सब कोई कर सके। तो सिर्फ सुर को सिमन द्वारा रूप के पीछे ले आकर गगन पर आ, जिसम बेहस हो जाए, ये पहला कदम। अगर रूह सिमट कर गगन पर आने लग जाए, मौत का काम हो गया कि नहीं? जीते जी मरने लग गए ना। सदगुरु मिलिए उल्टी वही भाई, जीवत मरे ता बूझ पाए, जब सदगुरु मिलता है वो क्या हमारी इंद्रियां फैल रही उल्टने लगेंगी इन्वर्ट होंगी अंतर्मुख होंगी। जब इंद्रिय बारी फैलाव से अंतर्मुख होंगी तो जिसम बेहस हो जाएगा जगत हमारे लिए नहीं रहेगा। जीवत माने जी जीते जी मरना होगा पिंड से रूह ऊपर आ जाएगी फिर तहां बूझ पाए फिर हकीकत खुलेगी तुम उस प्रभु की जानने वाले हो गए अपने आप को जानोगे। तो पहला कदम बाहर से हटना साईदा की पावना इधरों पटना तो उधर लावना कही है ना इधर से हटना पड़ेगा भाई। जब तक हमारी सोच पिंड और बाहरी फैलाव में लगी पड़ी है भाई बार बार हम दुनिया में आए। अगर जीते दी इसको इन्वर्ट अंतर्मुख करके अंतर नाम का रस मालिक का प्यार प्रेम जाग उठेगा मर कर कहां जाएंगे बार बार क्यों आएंगे आना जाना खत्म हो जाएगा। तो कहते हैं भाइयों क्या करो आज ही गगन पर आ जाओ ये गगन पिंड को छोड़ना सीख जाओ भाई जीते जी मरना आ जाए काम बन जाए। कहते कैसे आओ कहते सिमरन कर और सिमरन कैसे कर कहते सेवा कर सदगुरु सिमरन कर गुरु को सेवो गुरु को सेवो। सिमरन अपने आप भी मदद नहीं करेगा गुरु की मदद बड़ी भारी है उसकी तवज्जो उसकी हदायत उसका प्यार एक सुई दिल दिल को रा बड़ा भारी काम कर रहेगा। अगर भरोसे के साथ प्यार प्रेम के साथ अगर गुरु मंडल बना कर बैठोगे पिंड को रूह छोड़ने लग जाए। इंसान इंसान का पुजारी क्यों हो सवाल करिए वो गुरु सिख क्यों प्यारा है उस चीज के लिए जो चीज उससे मिलती है। उपनिषदों में क्या कहा है इसी को पति प्यारा है किस लिए अपने लिए माफ कर बच्चे को पुत्र पिता क्यों प्यारा है अपने लिए। अरे भाई सिख को गुरु क्यों प्यारा है अपने लिए उस फैज के लिए जो उसको उससे मिलता सारी उम्र बै खरीद होकर वो रहना चाहता कोई आन मिलावे मेरा प्रीतम प्यारा हो तिस पे आओ बेचाई कोई हो सवाल नहीं कौन हो हिंदू हो मुसलमान हो सिख हो ईसाई हो चूड़ा हो चमार हो जो उसको हमें हमारे प्रीतम से मिला दे क्या उस पर मैं अपने आप को बेच दूंगा बै खरीद करूंगा किस लिए हम हर दर्शन देखन के ताई वो हमारा प्रीतम कौन है प्रभु उसको दर्शन पाने के लिए अगर कोई मददगार हमको मिला दे तो और क्या चाहिए। तो पिंड से ऊपर आने के लिए खेचे सुरत गुरु बलवान ये सम्राट पुरुष का काम है अपने आप हम इंद्रियों के घाट से ऊपर नहीं आ सकते। हम इस वक्त हमारी आत्मा पिंड में कैद है जादू भरे संदूक में कैद है ये कैद इसे ऊपर कौन ला सकता कोई जो ऊपर निकला हो वही खेचे तो थोड़ा सा बाहर देकर पिंड शुरू ऊपर आ जाएगी काम एक बार ऊपर आए फिर रोज रोज अभ्यास से बढ़ाओ। तो कहते आज ही गगन पर आना भाइयों सीख जाओ कैसे कहते सिमरन द्वारा और गुरु को सेव गुरु का भरोसा प्यार जो हुक्म कहते हो उसके मुताबिक जीवन बनाओ